आस्तिक अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, मेरे कपड़े तुम्हें साफ करने हैं, वो भी हाथों से, और मेरे लिए खाना मेरे पसंद का ही होना चाहिए। इसके अलावा कमरे की सफाई वो तो तुम अकेले ही कर लोगी, और बाकी का क्या काम है वो तुम्हें ये लोग बता देंगे। उसके बाद आस्तिक वहां से सीधे बाहर की तरफ चला गया। अरुणिमा बस हैरानी से आस्तिक को जाता हुआ देखती रह गई। वो अपने मन में कहती है, अगर राजा साहब मुझसे इतनी ही नफरत करते हैं तो फिर क्यों उन्होंने मुझसे शादी की और क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरुणिमा का एक मन किया कि वो अपनी जान दे दे। इस जिल्लत भरी जिंदगी में उसका पहला ही दिन था और उसने पहले ही दिन अपनी जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। सारी जिंदगी के बारे में सोचकर तो अरुणिमा की जैसे जान ही निकल रही थी। आस्तिक अपने कमरे से वापस आया तो उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था। अरुणिमा दरवाजे के पास सर झुकाए खड़ी थी। आस्तिक उसके पास आया और उसके कानों के पास झुकते हुए कहता है, रात के लिए तैयार रहना। अरुणिमा की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि चेहरा उठाकर आस्तिक को देख सके, और आस्तिक अपने डेविल अंदाज के साथ अरुणिमा को देखता हुआ वहां से चला गया। आस्तिक जैसे ही महल से बाहर निकला, अरुणिमा की जान में जान आई और वो सबसे पहले भागकर अपने कमरे में गई। अरुणिमा सबसे पहले बाथरूम गई और अपने गले में उंगली डालकर उसने सारा खाया हुआ खाना उल्टी कर दिया। अपने खोए हुए स्वाभिमान और टूटे हुए आत्मसम्मान को संभालते हुए अरुणिमा ने जितना कुछ भी खाया था वो सब उसने उल्टी के जरिए बाहर निकाल दिया, और अब उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई थी। अरुणिमा अपनी साड़ी के आंचल से अपना मुंह पोंछते हुए वापस लिविंग रूम में आई। उसे नाश्ते के लिए दोपहर का खाना बनाना था। आस्तिक की धमकी उसे अच्छी तरह से याद थी कि खाना उसकी पसंद का होना चाहिए, लेकिन उसकी पसंद क्या है ये उसे पता ही नहीं था। तभी अरुणिमा का ध्यान सीढ़ियों से उतरती प्रणाली के ऊपर गया, जो अपने फैशन हाउस जाने के लिए निकल रही थी। अरुणिमा प्रणाली के पास आई और कहती है, प्रणाली, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि राजा साहब को खाने में क्या पसंद है और क्या नापसंद है? प्रणाली, जो फोन पर किसी से बात कर रही थी, उसने अपना फोन काटते हुए अरुणिमा को देखा और कहा, भाई को मटर पनीर और हींग के तड़के वाली दाल बहुत पसंद है, और जहां तक बात रही नापसंद की, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें तुम नापसंद हो। अरुणिमा हैरानी से प्रणाली को देखते रह गई, और प्रणाली अपने चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान लिए अरुणिमा को देखती हुई आगे चली गई। क्या फर्क पड़ता है अगर आस्तिक के साथ साथ उसका परिवार भी अरुणिमा की बेइज्जती करता है तो? अरुणिमा की आंखों से आंसू बहना चाहते थे, लेकिन उसने अपने दिल को अब मजबूत कर लिया था, ये सोचकर कि यही अब उसकी जिंदगी है, और अगर उसने जिंदगी से छुटकारा पाना चाहा तो इसका भुगतान उसके परिवार को करना होगा। अरुणिमा मायूस चेहरे के साथ किचन की तरफ गई। रानी साहिबा को किचन में आया देखकर सारे नौकर सतर्क हो गए और सर झुकाकर खड़े हो गए। अरुणिमा अंदर आई और अपनी साड़ी के आंचल को कमर में लगाते हुए कहती है, आप सब अपना काम कीजिए, मुझे बस राजा साहब के लिए खाना बनाना है, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। ये कहते हुए अरुणिमा ने अपना काम करना शुरू किया और सब लोग दया भाव से अरुणिमा को देखने लगे। आज तक इस किचन में प्रणाली और कीर्ति ने कभी कदम भी नहीं रखा था, और रानी साहिबा अपनी शादी के दूसरे दिन ही किचन में आकर काम कर रही थी। राजस्थान एयरपोर्ट। एक फ्लाइट अभी अभी राजस्थान एयरपोर्ट पर लैंड हुई और एक आदमी कुछ ब्लैक सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में घिरा हुआ बाहर आया। बाहर आते ही कुछ स्कॉर्पियो गाड़ियां जो एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रही थी, एक गार्ड ने उस गाड़ी का दरवाजा खोला और वो आदमी उसमें बैठ गया। उसके साथ बैठा उसका असिस्टेंट कहता है, सर हम यहां से सीधे होटल चेकआउट करेंगे ना? वो आदमी बाहर राजस्थान के नज़ारों को देखते हुए कहता है, नहीं होटल नहीं जाएंगे। असिस्टेंट ने हैरानी से कहा, होटल नहीं जाएंगे तो फिर सर हम रहेंगे कहां पर? वो आदमी जो अपने सनग्लासेस से बाहर का नज़ारा देख रहा था, उसने अपने एक हाथ से सनग्लासेस को उतारा और उन्हें फोल्ड करके जेब में रखते हुए कहा, जैसलमेर। असिस्टेंट हैरानी से कहता है, लेकिन सर जैसलमेर में हमें क्या काम है? हमें तो यहाँ जयपुर में काम है ना, और जैसलमेर में इतनी जल्दी होटल बुकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, जैसलमेर में होटल बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मेरा घर है। असिस्टेंट हैरानी से अपने बॉस को देखते हुए कहता है, क्या आपका घर है? आपने कभी बताया नहीं कि आपका घर जैसलमेर में है। वो आदमी मुस्कुराते हुए अपने असिस्टेंट को देखता है और कहता है, बताया तो मैंने तुम्हें बहुत कुछ नहीं है, पर तुम पता कर लेते हो ना, तो ये भी पता कर लिया होता। उसका असिस्टेंट सर झुका लेता है और धीरे से कहता है, सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। वो आदमी हंसते हुए नामे सर हिलाता है और कहता है, कोई बात नहीं रमन, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी को इतना राज रखा हुआ है कि एक राज से पर्दा उठने के बाद एक नया राज सामने आता है। उसका असिस्टेंट हैरानी से अपने बॉस को देखते हुए कहता है, सर मैं कुछ समझ नहीं। आदमी अपने असिस्टेंट से कहता है, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, बस ये बताओ कि हमारी नई कंपनी के लिए जो जमीन देखी थी वो फाइनल हुई या नहीं। असिस्टेंट ने लैपटॉप उस आदमी की तरफ करते हुए कहा, जी सर जमीन तो मिल गई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जमीन यहाँ शहर की तरफ नहीं मिल रही है, बल्कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा राज्य है सिंघल नाम का, जमीन वहाँ पर है, पर बात ऐसी है कि जमीन की रजिस्ट्री के लिए वो लोग कह रहे हैं कि हमें वहाँ के राजा साहब से बात करनी होगी। वहाँ पर कोई भी नई कंपनी बनती है तो इसका डिसीजन वहाँ के राजा साहब लेते हैं। राजा साहब का नाम सुनते ही उस आदमी की आंखों में एक चमक सी आ गई और वो मुस्कुराते हुए कहता है, राजा साहब, आस्तिक रायचंद। असिस्टेंट हैरानी से अपने बॉस को देखते हुए कहता है, आप जानते हैं आस्तिक रायचंद को? वो आदमी मिस्टीरियस स्माइल के साथ खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, उस इंसान को सक्षम तलवार से बेहतर और कोई जान ही नहीं सकता है।